तो उस दिन क्या हाल होगा इसका। ये जो दिन बड़ा मुश्किल दिन है, तो अल्लाह ताला ने उसका कुछ और हाल बयान किया। भैया मा याउज़ुज़्ज़ालिमु अला यदई, उस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा। आपने देखा है कभी किसी को कोई अपने हाथों को चबा रहा हो? देखा है कभी? किस वक्त ऐसा होता है? आप क्या समझते हैं कब होता है ऐसा? जब बहुत ही ज्यादा इंसान को गुस्सा भी आ रहा हो अपने आप पे भी, और कोई बहुत ही हसरत हो, बहुत ज्यादा गम हो, तो फिर इंसान क्या करता है? अपने हाथों को चबाने लगता है। और स्पेशली ऐसी चीज के ऊपर कि जो इंसान को अब हसरत जिसकी हो गई हो, अब मिल ना सकती हो वो चीज, तो उसके ऊपर इंसान जो कुछ जब रिग्रेट होता है ना, खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला माफ करे, या कोई किसी ने अपनी बेवकूफी की वजह से अपने बच्चे को मार दिया, मतलब उसकी कोई ऐसी नेग्लिजेंस हो गई थी कि कुछ उससे ऐसा काम हो गया, बच्चे को कहीं भूल गया या कुछ है, और उसके बाद उसका बच्चा मर गया। अब वो क्या करता है? अब उसको इतना यानी रिग्रेट होता है, इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है, अपने आप पे इतना गुस्सा था कि वो अपने हाथों को पकड़ पकड़ के ऐसे करता है कि मैं अपने हाथों को चबा दूं, काट लूं अपने आप को। ये इंसान उस दिन ऐसे करेगा क्यों? कि हाय, मैंने तो अपना सत्यानाश खुद ही कर दिया। उसकी कैफियत बता रही है कि उसको बोला, मुंह से नहीं कोई बात बताई, उसकी कैफियत बता रही है कि उसको कितना ज्यादा अंदर रिग्रेट है, कितनी ज्यादा हसरत है उसको कि ये मैंने क्या कर दिया। हाय, एक ही तो जिंदगी मिली थी अपना इटर्नल फ्यूचर बनाने की, उसको संवारने की। अरे अल्लाह, मैंने वो एक चांस मिला था, मैंने वो गंवा दिया हमेशा हमेशा के लिए। कहेगा यकूलू, वो कहेगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं रसूल के साथ रास्ता बना लेता। हाय, काश मैं वो करता जो रसूल ने किया, काश मैं उनके रास्ते पर चलता, काश मैं उनकी बताई हुई बात को मानता। ये वो कह रहा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, अब इतना गम है, दांतों से हाथों को काट रहा है। देखो, ये जिसने अपने आप पे जुल्म किया ना, जिसने अपने आप को जिंदगी में नहीं बांध के रखा, आज देखो वो किस मकाम पे पहुंच गया। दुरुल मंसूर में है कि वो इतना काटेगा हत्ता कि अपनी हड्डियां तक तोड़ डालेगा, इतना उसको गम होगा। वही वाली बात है ना, यकूलो या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता, कुछ कर लिया होता, काश मैं इताअत कर लेता। आज तो रसूल का रास्ता इख्तियार करना कितना मुश्किल लगता है, कितना बैकवर्ड लगता है, नाउज़ बिल्ला, कितना आउट ऑफ डेट लगता है, मगर कल को जब वहाँ खड़े होगे ना, तो पछतावा होगा, इतनी शर्मिंदगी होगी, जिंदगी को बदलने की चाहत भी होगी दिल में कि अब मैं जिंदगी को बदल लूँ, तब भी वहाँ ये चाहना तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तो क्या पता चला इसमें? आपको पता चल रहा है कि रसूल के रास्ते पर चले बगैर, रसूल को फॉलो किए बगैर आखिरत की कामयाबी मुमकिन है ही नहीं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तो दावा करते हैं, इताअत में नहीं आगे आते, कहते हैं मानना नहीं है, जो इन्होंने कहा है उसको मामूली समझते हैं, जो हदीस है उसको कोई वैल्यू ही नहीं देते। आप खुद ही बताएं, आप इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई हदीस आपके सामने आती है जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, या इन लोगों पे लानत की, या इन लोगों के बारे में कहा ये हलाक हो गए, या इन लोगों के बारे में कहा कि ये हम में से नहीं है, तो आपको कोई फर्क पड़ता है? आप फौरन कह देते हाँ हदीस ही है ना, कुरान तो नहीं है ना। तो रसूल का रास्ता क्या है? वो जो उनका तरीका है, वो जो उनके फरमान है, जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और उनकी ज़िंदगी क्या थी? क्या थी उनकी ज़िंदगी? जब हज़रत आयशा से पूछा गया, क्या बताया था उन्होंने? कि वो चलता फिरता कुरान थे। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि बस खाना पका लिया घर वालों के लिए, घरों को सजा संवार लिया, नौकरियां कर ली, जॉबें कर ली, और बस पैसे कमा के बस खुशी खुशी, हाँ यहाँ पे हम बस लग्जरी लाइफ गुजार के फिर वहां पे भी पहुंचेंगे तो कल को यही मिल जाएगा। तो इनको अपने इस ख्याल को जरा सा रिवाइज कर लेना चाहिए इस आयत को पढ़ के, क्योंकि रसूल का रास्ता सिर्फ घर वालों में खुश रहने का रास्ता नहीं है, सिर्फ खाने पकाने और जॉबें करने का रास्ता नहीं है। उनका रास्ता क्या था? सबसे बड़ा तो उनका मिशन है, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, उसके कलाम की तरफ बुलाना। फिर उनकी जिंदगी देखें कैसी थी, उनका इस बारे में सब्र कैसा था, उनके अखलाकियात कैसे थे, उनकी बातचीत कैसी थी, उनकी अना कितनी थी। लेकिन ये बात आज नहीं ना समझ आती, ये बात फिर जब समझ आएगी तो तब वक्त गुजर चुका होगा। और सूरह आज़ाब में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तो सोचते ना रसूल का रास्ता क्या रास्ता, बस ठीक है जो हम चल रहे हैं हमारा ही रास्ता ठीक है। जाहिर सी बात है रसूल का रास्ता अपनाने के लिए अपनी मर्जी का रास्ता तो छोड़ना पड़ेगा ना, अपनी मर्जी को तो किल करना पड़ेगा, रसूल के रास्ते की मर्जी को अपनाना पड़ेगा, है ना, रसूल की मर्जी को अपनाना पड़ेगा। हम अपनी मर्जियां तो छोड़ना नहीं चाहते। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 66 में, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, उस दिन उनके चेहरे आग पे उलट पुलट किए जाएंगे, जैसे बारबेक्यू किया जाता है ना, तो कबाब को आग पे रख के पकाया जाता है, तो स्पेशली चेहरों का जिक्र आया कि चेहरे को आग के ऊपर उलट पुलट किया जाएगा। यकुलूना या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूल, वो उस दिन फिर कहेंगे काश हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते। आज तो कहते हैं हमने नहीं कुरान पढ़ना, इतने मुश्किल मुश्किल काम है इसके अंदर, तो हमसे नहीं किए जाते, छोड़ो इसको, वो कौन सा इतना ज़रूरी है, यानी वो समझते हैं कि इसको इस पे अमल किए बगैर भी वो रह रहे हैं तो ठीक ही रह रहे हैं, कौन सी ऐसी कयामत आ गई, बाकी भी तो दुनिया सारी रह ही रही है, हमें क्या इतनी मुसीबत पड़ गई कि अब हम ये पढ़ें भी और इसके ऊपर चलें भी। इतनी तकलीफ होती है जब ऐसे कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ये देखो कि वो कहेंगे उस दिन, हसरत करेंगे, हाय हमने काश अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। अल्लाह की इताअत करने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की इताअत किस चीज़ में है, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया, मानेंगे किस चीज़ को, क्या हवा में मानने शुरू हो जाएंगे, क्या मानेंगे आप, जब आप कुरान ही नहीं जानते। अल्लाह ताला की इताअत करने के लिए तो ज़रूरी है आप सुने तो सही पहले कि उसने कहा क्या आपको, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते, कान ही बंद कर लिए सुनने से, और कहते हैं सुनाओ ही ना हमें, क्यों, सुन लिया तो फिर हमसे तो होता नहीं है, इसलिए सुनेंगे ही नहीं आज से हम। मैं तो इन्ना लिल्लाही पढ़ सकती हूँ इसके ऊपर, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अफसोस है, हद अफसोस है ऐसे लोगों पे। उस दिन आग पे जब चेहरे उलट पुलट होंगे ना, फिर हसरतें होंगी, हाय काश हमने इताअत कर ली होती, हाय काश हमने बात सुन ली होती, मान लिया होता, अल्लाह के रसूल का रास्ता इख्तियार कर लिया होता, उस रास्ते को फॉलो कर लिया होता। देखिए आप जिसके रास्ते को फॉलो करेंगे उसी के साथ होंगे क्यामत के दिन। हमारी ख्वाहिशात तो बहुत हैं कि हम उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों, लेकिन क्या आपने उनका रास्ता अपनाया, उनके रास्ते को फॉलो किया? आज फिर जिसके रास्ते को फॉलो किया है कल उसी के साथ उठेंगे, उसी के साथ रहेंगे फिर। आज तो हम उनके रास्ते को पसंद भी नहीं करते, फॉलो करना तो दूर की बात है, कहते हैं हम उनका एहतराम बहुत करते हैं। तो पता है आपको कि मक्का के जो काफिर थे ना, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, जाती तौर पे तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद करते थे, सादिक और अमीन कहते थे, दुश्मनी किस चीज़ से थी उनको, इस रास्ते से जिस पे वो चल रहे थे, ये रास्ता नहीं उनको पसंद था, ये अल्लाह की इताअत का रास्ता जो था ना, ये नहीं उनको पसंद था। और इंसान क्या कहेगा, मैं तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा कितना भी शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला तूने हमें ये कलाम दिया और हमें उस दिन की ये मालूमात हमें पहुंचा दी, वरना हम तो कहाँ भटके पड़े रहते, हमें कहाँ पता चलता कि उस दिन क्या होने वाला है कि हम उसकी तैयारी कर ले। तो अल्लाह की कितनी रहमत है ना, अर्रहमान अल्लम अल कुरआन, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए अपना नाम अर्रहमान कह के फौरन फरमाया वो रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म दिया, कुरान सिखाया, कुरान की नेमत दे दी। ये नेमत ना होती तो मैं और आप तो लॉस्ट ही होते, पता ही ना चलता। अभी भी अमल तो अभी बाकी है, लेकिन मालूमात तो हो गई ना। तो उस दिन क्या कहेगा वो, दूसरी उसने क्या बात कही, या वैलता हाय अफसोस है मुझ पर, लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, काश मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाता। जब हाथों को चबाएगा ना तो एक बात तो ये कहेगा, अरे काश मैं रसूल का रास्ता इख्तियार कर लेता, फिर दूसरी उसकी हसरत कितनी बड़ी होगी, अरे काश मैं फलां के साथ दोस्ती ना करता। क्यों क्यों नहीं दोस्ती, दोस्ती की यहाँ पे कैसे बात आ गई? इसलिए कि इंसान अपने दोस्त के ही दीन पे होता है, वो ही करता है जो उसका दोस्त करता है, उसके ऊपर दोस्त का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इंसान देखे ना तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने दोस्तों की कितनी बातें सुनता है, कितनी बातें मानता है, कई काम इंसान खुद नहीं भी करना चाहता लेकिन दोस्तों की खातिर कर लेता है। इसी वजह से यहाँ पे वो हसरत करेगा, हाय काश मैं फलां से दोस्ती ही ना करता। एक तो इसके अंदर अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में लें, उस वक़्त के लिहाज से लें, तो वो एक मैं वाकया आपके सामने रखना चाहती हूँ, उकबा बिन अबी मुईद का ये वाक्य है। वो मक्का के मुशरिक सरदारों में से था, उसकी आदत ये थी कि जब किसी सफ़र से वापस आता था तो शहर के मुअज्ज़ज़ लोगों की दावत करता था और अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिला करता था। अब आप ये वाक्य सिर्फ सुन लें क्योंकि आपसे पूरा लिखा नहीं जाएगा, फिर आप मारफल कुरान से इंशाल्लाह आप देख सकते हैं ये वाक्य। एक मरतबा हस्बे आदत उसने मुअज्ज़ज़ीने शहर की दावत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। जब उसने आपके सामने खाना रखा तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारा खाना उस वक़्त तक नहीं खा सकता जब तक कि तुम ये गवाही ना दो कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक इबादत में नहीं है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह दो। उकबा ने ये कलमा पढ़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त के मुताबिक खाना खा लिया। उकबा का एक गहरा दोस्त था उबई बिन खलफ, आपने नाम भी सुना होगा। जब उसको खबर लगी कि उकबा मुसलमान हो गया तो बहुत गुस्से में आ गया, बहुत बरहम हुआ। उकबा ने उसके सामने बहानेबाजी भी की क्योंकि अब दोस्त था ना, कि कुरैश के मुअज्ज़ज़ मेहमान आए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे घर आए हुए थे, अगर वो बगैर खाना खाए मेरे घर से चले जाते। मैंने आपको बताया ना अरब बहुत मेहमान नवाज थे, तो अगर वो बगैर खाना खाए मेरे घर से चले जाते तो मेरे लिए कितनी रुसवाई थी, कितनी बेइज्जती थी। आज के मुसलमान जो है ना वो तो मेरे ख्याल में शुक्र करते हैं कि कोई हमारे घर से खाना ही ना खा के, खाने के बाद ना आ जाए और ना खाना खा के जाए, अरे खाना किसी को देना पड़ गया। मैंने आपको बताया कि कुछ क्वालिटीज़ इनमें ऐसी थी जो जहालत में भी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी कि ये लोग खाना खिलाने को बहुत ज़्यादा अपने लिए एक ऑनर समझते थे और बेलॉस होके खिलाते थे, किसी से किसी गर्ज़ की खातिर नहीं खिलाते थे कि कोई हमें बदले में आप कुछ दे, बल्कि बेलॉस खिलाते थे। और कोई खाना ना खाए इनके घर से तो इसमें अपनी बहुत जिल्लत समझते थे। तो कहने लगा कि मुझे बहुत ये हुआ कि मेरे लिए तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, इसलिए मैंने उनकी खातिर ये कलमा कह दिया। तो अब उबई बिन खल्फ ने कहा कि मैं तेरी ऐसी बातों को मैं नहीं मानता, जब तक तू जाके नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उनके मुंह पे ना थूक दे। और ये ऐसा बदनसीब इंसान था कि दोस्त के कहने से उसने इस गुस्ताखी पर भी आमादा हो गया और गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और उसने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के ऊपर थूका। अल्लाह ताला ने दुनिया में इन दोनों को जलील किया, गज़वाए बदर में ये दोनों ही मारे गए थे। तो देखो एक दोस्त ने दोस्त को कहाँ पहुंचा दिया, देख रहे हैं आप, एक इंसान की दोस्ती इंसान को कहां तक ले जा सकती है। तो कयामत के दिन ऐसे दोस्तों की दोस्ती पर रोएंगे कि हाय हमने क्यों उसको दोस्त बना दिया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी की हदीस है, कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन और तरीके पर चला करता है, इसलिए दोस्त बनाने से पहले खूब गौर कर लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। खूब जान लो, खूब जांच फट लो कि किसको आप दोस्त बना रहे हो, क्योंकि इन द एंड होता ये है कि आप अपने दोस्त का इन्फ्लुएंस कबूल कर लेते हैं। जितना भी आप कह लेना कि नहीं मैं नहीं कुछ करती, मैं नहीं किसी से असर लेती, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान अपने दोस्त से कुछ ना कुछ जरूर असर लेता है, उसकी सोहबत का, कंपनी का उस पर असर पड़ता है, छाप होती है दोस्तों के अमाल की उसके अमल पे, उसके असरात होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं इंसान पे। और अब आप देखें, खुद ही सोचें, या तो दोस्त का तरीका अपना सकता है या फिर रसूल का तरीका। अब जिसको दोस्त का तरीका प्यारा है, उसको फिर रसूल का तरीका छोड़ना पड़ेगा, और अगर रसूल के तरीके पे आता है तो दोस्त को छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्त को वो छोड़ना नहीं चाहता, दोस्तियां यारियां पुरानी है, वो दोस्त को नहीं छोड़ सकता, तो कहता है रसूल के तरीके को छोड़ देता हूँ, दोस्त नहीं छोड़े जाते। इसीलिए हशर के मैदान में लोग गम की शिद्दत से बेहाल होंगे, साथ हाथों को काटेंगे और इनकी आवाजें चीखों की सूरत में निकलेंगी, कहेंगे इतने दुख से कहेंगे कि अल्लाह मैंने क्यों उसको अपना दोस्त बना लिया, हाय काश मैं ना बनाता, हाय मेरी शामत क्यों मैंने उसको बनाया, उसी ने मुझे इस रास्ते पर लगाया था। दुआए कुनूत में भी आप कहते हैं ना, व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखला व नत रुको मई अफजुरुक, नत रुको मई अफजुरुक का मतलब क्या होता है? अल्लाह हम उसे छोड़ देंगे जो तेरा नाफरमान हो, जो तेरा गुनाहगार हो, जो फाजिर है, अल्लाह हम उसको छोड़ देंगे। रोज कहते हैं दुआ कनूत पढ़ते हैं, कहते हैं पता है नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये दोस्तियाँ इतनी अहम चीज़ हैं, इसके इफ़ेक्ट्स सिर्फ दुनिया तक नहीं है, इसके इफ़ेक्ट्स आखरत में भी होंगे। अल्लाह ताला ने इन चीखों में दिखाया है कि लोग अपने दोस्तों के बारे में सही फैसला करें, किसको दोस्त बनाना और किसको नहीं बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना दोस्ती रखना मगर मोमिन के साथ, और तेरा खाना मुत्तकी के सिवा कोई ना खाए। यानी जब दावतें भी करने लगो ना, तो मुत्तकी लोगों को बुलाओ, अल्लाह से डरने वालों को बुलाओ। क्यों? आप कंपनी में वो लोग बैठेंगे तो आपके पर भी असर होगा, और अगर आप सिर्फ कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए फासिकों फाजिरों की दावतें करते रहते हैं, तो फिर सोच लें कि आपके पर क्या असरात पड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक हमनशीन, जो नेक दोस्त है ना और बुरा दोस्त है, उनकी मिसाल कैसे है? जैसे मुश्क वाला, मुश्क एक खुशबू होती है ना, परफ्यूम समझ लें, परफ्यूम बेचने वाला, और दूसरा लोहार की भट्टी में फूंक मारने वाला। मुश्क वाला या तो मुश्क का अतिया दे देगा, या तो आपको तोहफे में वो परफ्यूम दे देगा। अब आप उसके दोस्त हैं तो आपकी दोस्ती एक खुशबू बेचने वाले के साथ है, या वो इससे, या तुम इससे मुश्क खरीद लोगे, जाहिर उसके साथ बैठते हैं किसी दिन दिल चाहेगा आप मुझ खरीद ले, वरना तुमको इससे पाकीज़गा खुशबू तो बहर हाल आएगी। अब जरा आप साथ बैठेंगे, जैसे आप किसी चेन स्मोकर के साथ बैठ जाते हैं, कुछ देर में आपके साथ आपके अंदर से भी स्मेल आने लगती है ना। जिनके घरों में कोई स्मोकर होते हैं तो उनके घर में ही वो स्मेल फैली होती है, सब चीज़ों में से आ रही होती है। तो जब आप ऐसे के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर भी वैसी ही स्मेल आने लगती है। खुशबू बेचने वाले के साथ बैठेंगे तो आप कुछ भी ना करेंगे तो खुशबू आप में से आने लगी, और जो लोहार की भट्टी वाला है वो तुम्हारे कपड़े जलाएगा, वरना तुमको इससे बहरहाल नागवार बदबू तो आएगी। अब भट्टी भोंकने वाले के साथ आप बैठ जाएं तो जाहिर है वो एक, जैसे भी मैंने आपको स्मोकर की बात बताई, तो स्मेल तो आने ही लगेगी अगर वो कपड़े नहीं भी जलाए तो। इसलिए दोस्तों के बारे में इंसान को बहुत जांच फटकना चाहिए, क्योंकि क्यामत के दिन इस दोस्ती पर वो बहुत ही नादम होगा कि ये इंसान को हलाकत के गड़े में डाल देगा। इसीलिए फरमाया ना आगे अल्लाह ताला ने, कि वो कहेगा, एक उसकी वजह क्या थी, क्यों ये इतना रिग्रेट कर रहा है कि मैंने उसको क्यों दोस्त बनाया। लकद अदल्लानी आने जिक्री बाद इस जानी, उसने तो मुझे, उस दोस्त ने, वो मेरा दोस्त ऐसा था, उसने तो मुझे जिक्र से ही गाफिल कर दिया, जिक्र से ही भटका दिया, उससे ही गुमराह कर दिया। जिक्र से क्या मुराद है? जिक्र किसको कहते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र का लफ्ज कुरान के लिए इस्तेमाल किया और नसीहत के लिए भी, यानी अल्लाह की बात की तरफ आने से ही मुझे गुमराह कर दिया। बाद इस जानी, जबकि वो आ गई थी मेरे पास, मुझे पता चल भी गया हुआ था, मुझे समझ आने भी लगी थी, लेकिन उसने ही मुझे भटका दिया, वो मुझे दूसरे ही रास्ते पे ले गया। कभी ऐसा होता है कि आप इस तरफ आने लगते हैं, दोस्त आपको बहका ले जाते हैं? क्यों? इसलिए, कैसे बहकाते हैं आपको? कि बुरे दोस्त जो होते हैं ना, उनको जाहिर है दूसरी चीज़ों से दिलचस्पी होती है, वो दूसरी चीज़ों का जिक्र करते हैं, ना उनको कुरान का ना अल्लाह का जिक्र उनको पसंद होता है, ना वो सुनना चाहते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप अगर मजलिस में जिक्र भी करें तो वो बात को गोल करके फिर वापस दूसरी तरफ चल पड़ेंगे, वो इंसान को बुरी बातों की तरफ लेके जाते हैं। चाहे बुरी की तरफ ना भी ले जाएं, बेकार चीजों में उसको उलझाए रखते हैं कि जिक्र ही भुला देते हैं। चाहे कुरान के इल्म की बात हो या वैसे ही बात हो, अमूमी नसीहत की बात हो, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करने देते। कोई करे भी तो हवा में उड़ा देते हैं, ऐसे ही इधर उधर करके बात को गोल कर देते हैं। देखिए, इंसान एक वक्त में दो तरह की एक्टिविटीज तो नहीं कर सकता ना, उसके पास 24 आवर्स का टाइम है सिर्फ एक दिन में। हर इंसान के पास ये 24 आवर्स है, उसमें उसने सोना भी है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका टाइम चला जाता है, 8-9 घंटे तक तो आप सोते रहते हैं। फिर खाना पीना भी है, बाकी जरूरियात भी है, जो जिम्मेदारियां उस पर उनको भी अदा करना है। अब जो लिमिटेड टाइम रह जाता है ना, उसमें भी अगर आप नेगेटिव एक्टिविटीज में अपना वो वक्त लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, और कुछ नहीं है तो रोज ही लंच रख लिए, कभी आज फलां के घर लंच है, दूसरे दिन फलां के घर है, तीसरे दिन फलां के घर, वहां पे भी गपशप, वहां पे भी मिलना जुलना, फिर दूसरी, ऐसे ही अपने आप को अगर आपने बिजी रखा हुआ है, तो फिर आपके पास वक्त कहाँ से आएगा जिक्र के लिए? ये भी एक इनडायरेक्ट तौर पे गाफिल करना है, इनडायरेक्ट तौर पे रोकना है कि सुबह शाम ऐसी एक्टिविटीज प्लान करते रहना कि वक्त ही ना मिले। और हम में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि बाकी तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं बहुत जोरों शोर से, मगर स्टूडेंट बनने को कहा जाए तैयार नहीं है, सबक सुनाने को कहा जाए तैयार नहीं है, टेस्ट देने को कहा जाए तैयार नहीं है, कहते वक्त ही नहीं मिल रहा। हालांकि उनसे ज्यादा भी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर हैं, कुछ और लोगों पे हैं, और वो तो अपना काम कर रहे हैं इन्हीं 24 आवर्स में, उनके पास भी 24 आवर्स ही हैं। तो वजह क्या है? इसलिए कि ऐसी एक्टिविटीज उनको अपने अंदर उलझाए रखती हैं, या ऐसी एक्टिविटीज हैं या ऐसे साथी हैं जो उनको ऐसी एक्टिविटीज में उलझाए रखते हैं। अगर उनके दोस्त मुखलिस होते तो उनसे भी कहते कि ठीक है इस हफ्ते में मिलना है, चलो इस हफ्ते में फिर खाने की जहां पे डिशेस आप प्लान करते हैं तो वहां पे ये नहीं प्लान कर सकते कि एजेंडा क्या होगा हमारा, हम चलो एक दूसरे को बैठ के सबक सुनाते हैं, चलो हम ये तैयारी कर लेते हैं, चलो हम ये एक हदीस बयान करते हैं, चलो हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं, कुछ भी नहीं, बैठे घंटों बैठे और उठ के चले जाते हैं फिर, और लेके कुछ भी नहीं गए, नाम ये हो गया कि अल्लाह की खातिर मिलनी है, ना कुछ सीखा ना कुछ सिखाया ना कोई खैर की बात की, गपशप करके उठ गए। और सबसे बड़ा ये शैतान का धोखा होता है, इसीलिए आगे फरमाया वकान शैतान उलिल इंसानी खजूला, शैतान है ही इंसान के लिए बहुत ज्यादा बेवफा। एक तो शैतान क्या करता है, शैतान सिर्फ जिन्नात में से नहीं होते, इंसानी सूरतों में से भी होते हैं, इंसानी भी होते हैं, वैसे ही इंसान को गाफिल कर देता है, इधर भुलाए रखता है ये चीजें। और दूसरी बात है, इसकी चालों से बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत भेस बदल बदल के आता है ना। बाज दफा क्या होता है, आप कहते हैं अल्लाह की खातिर मैंने इसे दोस्ती की हुई है, अल्लाह की खातिर मैंने तुम्हें दोस्त बनाया, अब आपके मुंह के कहने से थोड़ी कोई अल्लाह की खातिर दोस्त बन जाता है। आप चेक करें कि जितना टाइम आपका उसके साथ गुजरता है उसमें आपकी बातें क्या होती हैं, हर वक्त क्या टॉपिक होता है, फिर अल्लाह की बात ज्यादा होती है या अपनी और लोगों की बातें ज्यादा होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हमारी मजलिस के दोस्तों में हमारे कौन से दोस्त बेहतरीन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस हदीस से आप अपने दोस्तों को चूज़ करने में बहुत आसानी होगी और अपनी मजलिसों को भी ज़रा चेक करने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसको देख कर रब याद आ जाए, जिसकी गुफ्तगू से तुम्हारा इल्म बढ़े, यानी जिसको देख के क्या हो, रब याद आ जाए, और जिसकी बातों से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, और क्या है, और नंबर तीन बात ये, जिसकी वजह से तुम आखरत के लिए अमल करने के काबिल हो जाओ, यानी जिसके अमल को देखकर आपको आखरत याद आ जाए ना, उसको देख के फिर आप वहां से उठिए, आपने कहा अब मैं भी ये काम करूंगी, अब वो करती है ना, मैंने भी अब ये करना, या ये अमल याद आ गया, या बैठे तो किसी अमल के ऊपर बात हुई, आप ये तीन चीजें आप देख लें, उसको देखिए रब याद आए, उसकी बात उससे बात करें, आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा हो, और कुछ करने का, आखरत के लिए कुछ करने का आपके अंदर शौक पैदा हो जाए। तो सोहबत के लिए ऐसे इंसान को चूज करना चाहिए। अब आप देख लें कि आपसे कौन दोस्ती कर सकता है कि आप इस काबिल हैं, या आपको किससे दोस्ती करनी चाहिए। मालिक बिन दीनार ने कहा, बहुत अच्छी इनकी बात है, अगर उन्होंने कहा अगर तुम नेक मुसलमानों के साथ पत्थर उठाओ, यानी पत्थर ढोना कितनी मुशक्कत का काम है, तो वो बेहतर है इससे कि तुम बदकार लोगों के साथ खाने खाओ, खाने पीने में उनके साथ दावतें करते रहे, वहां पे फन बड़ा होता है, मजा बड़ा आता है, अब बदकार लोगों के साथ आप बैठे रहे, दावतें खाते पीते रहे, उससे बेहतर है कि आप नेक मुसलमानों के साथ, आपको पत्थर ढोने पड़ जाए, कितनी मुशक्कत का काम करना पड़ जाए, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है बजाय ऐसे लोगों के साथ इंजॉयमेंट करने के। ये देखिए, ये जब हसरत बन जाएगी ना, वापसी कोई नहीं होगी, फिर उस दिन फिर इंसान ऐसे दोस्तों को लेके सोचे, ये आज हम ये सोचते हैं ना, नहीं मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी बात नहीं होती। हर इंसान के ऊपर असर होता है, हर इंसान किसी ना किसी हद तक कुछ ना कुछ असर जरूर लेता है। अब आप, हमारे उर्दू में भी मुहावरा है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और आपके यहाँ पे भी एक बहुत ही आम टर्म है जो ली जाती है, पीयर प्रेशर। ये क्या होता है पीयर प्रेशर? अब पीयर प्रेशर की वजह से कई लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, कई लड़कियां लड़के सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात सिर्फ किस लिए कायम करते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से। यहाँ पे हम इसका बहुत जिक्र सुनते हैं, इससे पता चलता है ना कि इंसान के ऊपर उसके साथी के असरात होते हैं, या तो आप दोस्तों को इन्फ्लुएंस करते हैं या वो आपको करते हैं। अगर आप ये कहते हैं ना कि नहीं मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं करती, तो आप हो रहे हैं फिर, मैं तो उनको कुछ नहीं कहती, ना वो मुझे कुछ कहते हैं, वो अपना करते हैं, मैं अपना करती हूँ, ना मैं उनको कुछ कहती हूँ ना वो मुझे कुछ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये झूठ है, कोई ना कोई एक दूसरे को जरूर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप नहीं कर रही ना, हो सकता है कि आप नहीं कर रही होंगी, लेकिन आप ले रही होंगी फिर इन्फ्लुएंस, लाजमी बात है ये। आप देखिएगा, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स, क्या वो ही नहीं है जो आपके दोस्तों की है? क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि इंसान किसी से दोस्ती करे, वो बिल्कुल डिफरेंट है और आप बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे नहीं हो सकता, कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर है, तभी दोस्ती होती है ना। और वहां पे दोस्तियां खत्म हो जाती हैं जहां पे सोच मुख्तलिफ हो जाए, चल ही नहीं सकती दोस्ती। तो ये पीयर प्रेशर टीन्स नहीं सिर्फ लेते, ये पीयर प्रेशर हम जैसे लोग भी लेते हैं, इस जहन को, सोच को निकाल दें कि हम बहुत मजबूत हैं और बहुत ही हम पता नहीं कोई असर नहीं लेते। अल्लाह ताला ने तो सूरह कहफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी से कि आप किन के साथ बैठे हैं, आप अपने आप को उनके साथ रखा करें जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और उसी के रजा चाहते हैं। आयत नंबर 28 है ये सूरह कहफ की। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया, खबरदार आपकी निगाहें इनसे हटने ना पाएं कि दुनियावी जिंदगी के एक ठाट के इरादे में लग जाएं, और देखो उनका कहना ना मानना जिनके दिलों को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। जो अल्लाह से गाफिल है ना, देखो उनके पीछे ना चलना। और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है और जिसका काम हद से बढ़ चुका है, जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया, उसके पीछे ना जाना। अपने नबी को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या उनके पर क्या रंग चढ़ जाना था लोगों का? नहीं, तबलीग करना एक अलग बात होती है, किसी को अच्छी बात बताना एक अलग बात होती है, और दोस्तियां और किसी के साथ टाइम स्पेंड करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। अब आप बाज़ लोग कहते हैं हम इसलिए उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं कि फिर हम उनको अच्छी बात बताएंगे, अगर हम नहीं उनके साथ दोस्ती रखेंगे तो वो भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो फिर आप ये चेक करें कि आप उनको जब उनके साथ बैठते हैं तो किस हद तक आप उनको तबलीग कर पाते हैं, क्या आप कोई डिफरेंस मेक कर पा रहे हैं या नहीं। ये तो नहीं कि आप असर लेना शुरू हो गए उनका, ये भी चेक करना जरूरी है। क्योंकि देखें एक एक इंसान है जो इलाज करता है किसी का उस वक्त जब उसके अंदर खुद इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर खुद इम्यूनिटी डेवलप ना हो, जो खुद बीमार पड़ सकता हो, वो अगर बीमार का इलाज करे तो वो तो दो बीमार हो गए। इससे बेहतर ये है कि ऐसा इंसान इलाज करे जिसके अंदर इम्यूनिटी हो। आप पहले अपने अंदर रेजिस्टेंस को चेक करें। आप देखिए बीमारियों में भी वही लोग, ये जो कंटेजियस बीमारियां होती हैं उसके लिए वो मास्क भी पहनते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, फिर जाके बीमार को चेक करते हैं ना। लेकिन ऐसा बंदा इलाज शुरू कर दे उसकी अपनी इम्यूनिटी जीरो है, तो उल्टा नुकसान होगा ना, क्योंकि पहले एक बीमार था अब दोनों बीमार हैं। तो इस सिलसिले में ये देखना होगा आपके अंदर बीमारी को कैच करने से कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है भी या नहीं। ये ना हो कि उल्टा आप ही बीमार पड़ जाए। तो करें जरूर दूसरे का इलाज, करें दूसरे को लेकर आए इस तरफ, लेकिन फिर इस चीज से केयरफुल रहें कि आप इन्फ्लुएंस ना ले रहे हो बल्कि इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस लेना शुरू हो जाते हैं जिसका इंसान को पता भी नहीं चलता बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर दफ़ा इंसान को नहीं मालूम होता कि उसने इन्फ्लुएंस ले लिया, तो फिर वहीं से बाज आ जाए। इसका मतलब आपके अंदर अभी रेजिस्टेंस नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू रजीन कहते हैं, आपने फरमाया क्या मैं तुझे जिंदगी बसर करने का असल तरीका ना बताऊं जिससे दुनिया और आखरत दोनों की भलाई नसीब हो। अल्लाह की याद करने वालों के पास बैठा करो, जब तुम अकेले हो तो जहां तक हो सके अल्लाह के जिक्र में जुबान चलाते रहो, मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए। ए अबू रजीन, तुम्हें मालूम है जब कोई आदमी अपने घर से इसलिए निकलता है कि अपने दीनी भाई से मुलाकात करे तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हुए निकलते हैं कि ए अल्लाह, इसने तेरे लिए मेल जोल इख्तियार किया है तो तू भी इसे अपने साथ मिला। ए अबू रजीन, अगर तू अपने बदन से ये काम ले सके तो ज़रूर ले। देखे क्या करें, जब अकेले हों अल्लाह का जिक्र करें, और जब किसी के साथ बैठना हो तो उनके साथ बैठें जो अल्लाह को याद करने वाले हैं। मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए करें, किसी से मिलें तो अल्लाह के लिए मिलें। तो तब ऐसी दोस्तियां भी कयामत के दिन इंसान के लिए बायसे अजर हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कयामत के दिन, एक हदीस में आता है अल्लाह ताला फरमाएंगे कयामत के दिन कहाँ है वो जो मेरी अजमत को सामने रख के एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, यानी मेरी खातिर मोहब्बत करते थे, आज मैं इनको अपने साये में जगह दूंगा जब मेरे साये के अलावा और कोई साया नहीं है। खुद सोचे ना कि उन लोगों को इस चीज के ऊपर अजर मिलेगा, इस दोस्ती के ऊपर भी, यानी ये दोस्ती भी बाय से अजर हो गई। तो ये तो खुश नसीबी है कि अगर इंसान को नेक दोस्त मिल जाए, क्योंकि लाजमी उसके ऊपर असर होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच, उसके रुझानात बदल जाएंगे, नेक इंसान उसको नेकी की तरफ ही लेकर आएगा। पहले ज़माने में ये होता था कि कहा जाता था कि अगर किसी की इखलाकी हालत मालूम करनी है ना तो उसके दोस्तों को देख लो, पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे खुश नसीब भी हैं जो नबी और शहीद तो नहीं है, लेकिन क़्यामत के दिन, ये हदीस में है कि क़्यामत के दिन अल्लाह ताला उनको ऐसे मर्तबों पर फ़ख्र फाइज करेगा कि अंबिया और शुहदा भी इनके मर्तबों पर रश करेंगे। तो सहाबा ने पूछा, ये कौन से खुश नसीब हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह के दीन की बुनियाद पर मोहब्बत करते थे, ना आपस में रिश्तेदार थे, ना इनके दरमियान कोई माली लेन देन था। इनके चेहरे क़यामत के दिन नूर से जगमगा रहे होंगे, ये सरापाए नूर होंगे। जब सारे लोग खौफजदा होंगे, इनको कोई खौफ नहीं होगा। इन्होंने दोस्ती की नेकों के साथ। और अल्लाह ताला का इरशाद है, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुझ पर वाजिब है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करूं जो लोग मेरी खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं और दोस्ती करते हैं और मेरा जिक्र करने के लिए एक जगह जमा होकर बैठते हैं और मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और मेरी खुशनूदी चाहने के लिए एक दूसरे के साथ नेक सलूक करते हैं। ये मुसनद अहमद की और तिरमिजी की रिवायत है। यानी दोस्ती जब इंसान अल्लाह की खातिर करता है ना, तो इस पर अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत करते हैं कि इसने मेरी खातिर दोस्ती की है, मेरा जिक्र करने के लिए एक दूसरे के साथ मिले हैं, मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, मेरी खुशी के लिए एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं कि मेरी खुशी मिले इनको। तो ये एक सआदत है जो इंसान को नसीब होती है। अब आप देखें, एक मैं आपको ये भी बता दूं, कुरान पाक में या सूरह साफ़ात में, जन्नत में भी आपको पता है ना, मजलिसें होंगी, वहाँ पे भी दोस्त होंगे, उनके साथ इंसान बैठेगा, बातें करेगा। तो ये एक हाल एक ऐसी मजलिस का है जिसको अल्लाह ताला ने हाल बयान किया सूरह साफ़ात में। और इससे आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप बदों को दोस्त बनाते हैं तो फिर क्या हाल होता है, और बदों की दोस्ती छोड़ना इंसान के लिए बायसे निजात हो जाएगा। कि आयत नंबर 50 से 61 तक है कि जन्नत में अहले जन्नत एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो के हाल अहवाल दरियाफ्त करेंगे। इनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी होता था जो मुझसे कहा करता था, क्या तू भी इस बात को मानता है कि जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे, हम बदला पाएंगे? फिर वो अपने जन्नती साथियों को मुखातिब करके पूछेगा, अब आप लोग देखना चाहते हो कि वो कहाँ है? वहीं से वो जन्नती झांकेगा, मे भी आगे कोई सीन आ जाए, जैसे हम तो टीवी पे ही देख लेते हैं ना, इतनी दूर बैठे हुए भी के मनाजिर देख लेते हैं, तो उनके सामने फौरन ही वो सीन आ जाएगा। वहीं से वो जन्नतियों को झांकेगा, जिन जहन्नुम तक नहीं जाना, वहीं से वो उनको नजर आ जाएगा, तो अपने साथी को जहन्नुम की गहराई में पाएगा। अब वो दुनिया में हो सकता है उसका कोई कुलीग हो, कोई हमसाया हो, कोई साथी हो, लेकिन अगर ऐसे लोगों को दोस्त बनाया जाता तो इसका क्या हाल होता? अब देखिए, उसको ये दुनिया में कहा करता था, अब वो जहन्नुम की गहराई में, ये कहेगा, वल्लाही तू तो मुझे हलाक कर देने वाला था, अगर मेरे ऊपर अल्लाह का फजल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में शामिल हो जाता जो पकड़े गए, अल्लाह ने मुझे बचा लिया इसकी कंपनी से और इसकी बातों में आने से, वरना मैं भी इसके साथ ही होता। फिर वो जन्नती अपने दोस्तों से मुखातिब होके अपनी खुशी का इजहार कहेगा और कहेगा, अच्छा तो ये सही है ना कि अब हमें जन्नत में मौत नहीं आएगी, हाँ जो पहले मौत हो चुकी बस आ चुकी, यकीनन ये बड़ी कामयाबी है, ना ही हमें अजाब दिए जाएंगे। ऐसी कामयाबी हासिल करने के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। तो ये बताती है आयत कि देखिए दोस्ती किस बुनियाद पे होनी चाहिए। और शैतान इंसान का दुश्मन है, इंसान को वो ऐसे ऐसे हेर फेर करता है, ऐसी ऐसी तरह से उसको दिखाता है चीज़ें कि जो उनकी हकीकत नहीं होती, वो इस तरह से उसके सामने चीज़ें लेकर आता है, बुराई को भलाई करके दिखा देता है। और देखिए आज वो बड़ा अच्छा दोस्त बन के उस दोस्त की सूरत में आएगा, बुराई को भलाई करके दिखाएगा, खूबसूरत करके दिखाएगा, और वो बड़ा बेवफा है इसलिए क्योंकि उस दिन गायब हो जाएगा, उस दिन कोई नहीं काम आना उसने, उस दिन आके किसी की नहीं मदद करनी उसने, तो शैतान के बहकावे ने में ना आना। आपके पास जो लिमिटेड वक्त है उसको ऐसे प्रोडक्टिव तरीके पर इस्तेमाल करें कि आखिरत में काम आ सके, आपकी सोशल गैदरिंग्स भी आपके लिए बाय से अजर बन सके, टाइम वेस्ट करने से बचें। असल दोस्त वो है कि जो आपकी खैर ख्वाही चाहता है, जो आपको भी, अपने आप को तो आग से बचाना चाहता है, आपको भी आग से बचाना चाहे। तो जो नसीहत की तरफ आपको कुरान की तरफ ही तवज्जो नहीं करने देना चाहता, तो फिर खुद ही सोचें कि जो आपको भलाई से रोकता है वो आपका दोस्त है या दुश्मन है। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं इंसान अपने दोस्तों से बड़ा इंप्रेस होता है ना, वो क्या होते हैं, दोस्तों का साथ निभाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्त ने क्लास लेनी शुरू की कुरान की, अब वो मेरी दोस्त है, अब वो क्लास ले रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं, अब मैं भी जाके एडमिशन ले लेती हूँ, वहीं लूंगी जहां पे दोस्त ने लिया। चलो यहां तक तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन अब चूंकि खुद तो कुछ दिमाग सोचना ही नहीं है ना, इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं दोस्त से कि दोस्त ने फिर कुछ दिन बाद दोस्त ने छोड़ दिया, तो अब उसने जिस वजह से भी छोड़ा, अब इसका भी दिल नहीं लगने लगा, अब दोस्त ही यहाँ पे नहीं है क्लास में, तो फिर क्या मैंने भी क्या बैठना, उसने छोड़ दिया तो अब मैं भी क्यों पढ़ूं। तो अपना कुछ नहीं है, सब कुछ दोस्त ही जो करे, तो खुद सोचे फिर इंसान ऐसे दोस्तों के ऊपर उस दिन हसरत ही करेगा ना, कहेगा हाय काश मैं इसके पीछे ना गई होती, मेरे पास तो आ गई थी बात, इसका मतलब है बात इस तक पहुंच गई थी, आया था कुरान इसके पास, मगर इनके दोस्तों के कहने पे आके इसने छोड़ दिया था, या फिर अमल करने लगी थी, जिक्र आ गया था, नसीहत आ गई थी मेरे पास, मुझे बात समझ भी आ गई थी, मैं तो अमल करने ही लगी थी। लेकिन अब आप खुद आज सोचे ना, जरा ऑनेस्टली बताएं, कितने काम ऐसे हैं जो आपका करने को दिल चाहता है, नेकी के काम है, करने को दिल भी चाहता है, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो एक ही रुकावट है, और वो क्या, कि मेरी फलां दोस्त क्या कहेगी, वो मेरा मजाक उड़ाएगी, वो कहेगी, अब कई दोस्तें ऐसे शुरू हो जाती, तुम क्या मुल्लानी बन गई हो, तुमने क्या ये शुरू कर दिया, आखिर कुरान हमने भी पढ़ा हुआ है, घर में पढ़ लो, ये तुमने क्या क्लासेस शुरू कर दी हैं। अब वो इंसान वहीं से डिसहार्ट हो जाता है, कई उल्टे पुल्टे मशवरे देने लगती हैं, वो जाहिर है इंसान जाके जब ऐसे दोस्त बनाए होंगे जिनको खुद जो खुद कुरान से नहीं जुड़े हुए, तो जब उनसे जाके मशवरा मांगे, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, तुम मशवरा दो जरा मुझे, मुझे क्या करना चाहिए अब, तो जाहिर है जो खुद जिक्र से दूर है वो आपको अच्छी नसीहत कैसे कर सकता है, वो तो अपनी अकल के मुताबिक ही करेगी ना, जिस राह पे वो है उसी राह पे आपको डालेगी। आप मशवरा जाके किससे ले रहे हैं जो खुद अल्लाह से दूर है, हमारी भी अकल मारी जाती है ना कि हम उन लोगों से जाके पूछते हैं। देखिए मशवरा लेने के लिए दोस्त होना नहीं है जरूरी, मशवरा लेने के लिए जरूरी है कि वो आपके इतनी अकल भी रखता हो, इतनी समझ भी रखता हो कि वो आपको सही मशवरा दे सके। एक शख्स ने लैलतुल कद्र में सिर्फ नेक दोस्त की दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे नेक दोस्त मिल जाए ताकि मेरे लिए नेकी के रास्ते पे चलना आसान हो जाए। तो लोगों ने कहा कि तो ये तुमने क्या दुआ मांगी, इतनी कबूलियत की घड़ी है और तुम ये मांग रहे हो। तो उसने कहा कयामत के दिन भी इंसान उन्हीं के साथ उठाया जाएगा ना जिनसे वो मोहब्बत करता होगा, तो मेरी दोस्ती तो वहां पे भी काम आनी है, तो दुनिया में भी वो मुझे नेकी के रास्ते पर ले लगाएगा, नेक दोस्त मिल गया तो, और वहां पे भी जाके उसी के साथ हूंगा फिर, तो अल्लाह मुझे नेक दोस्त दे दे। तो ये वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी रब की नाफरमानी में गुजारी, अल्लाह के रसूल के रास्ते को नहीं अपनाया और दोस्त की इतात में गुजारी, तब भी वो कहेगा ना दोस्त ने मुझे कुरान से रोक दिया था। तो कई दफा दोस्त साफ साफ ही आपको रोक देते हैं, और कई दफा दोस्त ऐसी एक्टिविटीज में आपको उलझाए रखते हैं कि आप अल्लाह की तरफ नहीं आ सकते, ऐसी चीजों में ऐसे, क्योंकि उनके शुगल डिफरेंट है ना, तो वो उन शुगलों में खुद भी लगे रहते हैं और आपको भी उलझाए रखते हैं, तो वो दोस्त आपका वक्त खा जाते हैं, पता है, वो आपके माल का नहीं नुकसान कर रहे, आपकी किसी चीज का नहीं, वो आपकी वक्त का नुकसान कर रहे हैं, वो आपके वक्त को खा जाने वाले हैं। तो अपनी कंपनीज बदलें, अगर आप समझ रहे हैं कि आप अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, तो अभी आपकी इम्यूनिटी वीक है, अभी आप खुद नए नए इधर को आए हैं, अपनी पहले जायजा लें, अपने दोस्तों को देखें कि मेरे दोस्तों में ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे अल्लाह से करीब कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो अल्लाह से दूर करते हैं, जिनकी बातों में मैं आके रब की बात को पीछे डालती हूँ, और कितने हैं जो मुझे अल्लाह से करीब करने वाले हैं, उनसे उनके साथ मैं बैठती हूँ तो मेरा ईमान ताजा हो जाता है। तो शैतान की बात दोस्ती में इसीलिए आई है ना, कि देखें आप बुरे दोस्त, बुरे इंसान को दोस्त बनाते हैं तो दरअसल उसको नहीं बना रहे होते, उसके लीडर को दोस्त बना रहे हैं। और उसका लीडर कौन है? शैतान है, जिसके तरीके पर वह चल रहा है, वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने शैतान से दोस्ती कर ली। जो शैतान से दोस्ती कर लेगा तो शैतान तो उसको दगा ही देगा ना। इतनी कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप खुद देखेंगे कि शैतान इंसान को ऐसे उनके पीछे लगाता है, वो गंदी चीजें होती हैं, गुनाह की चीजें होती हैं, इतना खूबसूरत, इतना फन बना के दिखाता है, इंसान मान जाता है, तैयार हो जाता है उनको करने पे, खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे मछली को फांसने के लिए बेट लगाते हैं ना आगे, वो फूड उसका उसके आगे लगाते हैं, तो मछली फंस जाती है, मछली ने उसको खाना समझा, हालांकि वो उसकी मौत थी। यही शैतान का तरीका है, वो इंसान को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचता है। शुरू शुरू में इंसान को बुराई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर आहिस्ता 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 करके उसको ऐसा यूज टू कर लेता कि बुराई फिर बुराई लगती ही नहीं है। वो बड़ा धोखाबाज है। आपको मैंने वो राहिब की कहानी सुनाई थी ना, जिसके पास वो दो भाई आए थे और उन्होंने अपनी बहन की रखवाली के लिए छोड़ दिया था उसके पास। फिर पहले कैसे खाना बाहर से ही रख जाता था, फिर उसने कहा थोड़ी बातचीत कर लूँ, फिर चलो अकेली है तो थोड़ी इसके साथ इसको कुछ दर्स ही दूँ, कोई इसको दिलजोई की बात करूँ, कुछ सिखा ही दूँ इसको जाके अंदर। फिर अंदर बैठने लगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हाल हो गया था, और उसने कुफर तक पहुँचा दिया उसको। तो ये बड़ा दगाबाज है, इसके पीछे ना चलना, ये दोस्तों के भी रूप में आता है, इससे होशियार रहना। आप चाहते हैं कि आप नेक बने तो नेक लोगों की दोस्ती अपनाएं, नेक लोगों में उठें बैठें, दावा करें, जरूर तबलीग करें, मगर गहरी दोस्तियां आपकी नेकों के साथ ही होनी चाहिए। वकाल रसूल या रब्बी, कहेगा रसूल, ए मेरे रब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, ए मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआना महजूरा, ए मेरे रब, इस मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये शिकायत किसकी तरफ से है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी तरफ से शिफात के लिए हमने उम्मीद बांध रखी है कि वो हमारी सिफारिश करेंगे उस दिन, वो उल्टा शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ा हुआ था। कौम से मुराद मक्का के भी लोग हैं, और कौम से मुराद आपकी उम्मत भी है, कि उम्मत के इन लोगों के खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, जो कुरान को छोड़ के और शुगलों में पड़े हुए हैं, कुरान को एक तरफ डाला हुआ है और मशगूलियात उनकी बहुत है, उनके खिलाफ गवाही देंगे, खुद खड़े होकर कहेंगे। अहले मक्का तो ऐसे थे कि मुजाहिद कहते हैं कि वो अपनी रातों को गुफ्तगू करते थे और कुरान को छोड़ देते थे, यानी वो लोग अपने ना चौपालें होती हैं ना, रात को बैठ के बातें करते हैं, रात गए तक गपशप करते रहते थे, जैसे आज हम रात रात तक एक एक बजे तक बैठे गप्पे मार रहे हैं, वीकेंड होता है तो रात रात तक बैठे, मगर कभी कुरान की तरफ आने का तो वक्त नहीं मिलता। ऐसी एक्टिविटीज बना रखी हैं कि कुरान के लिए कहाँ से टाइम निकलेगा, तो वो लोग ऐसे किया करते थे। तो वो शिकायत करेंगे उस दिन कि इन्होंने छोड़ा हुआ था। अब सोचें, अगर वो ही शिकायत करने खड़े हो गए तो फिर लोगों का बनेगा क्या? और छोड़ने का मतलब क्या है? पहले तो ये समझे ना कि छोड़ने का क्या मतलब है। छोड़ना, काफिर ही सिर्फ छोड़ता नहीं है, मुसलमान भी छोड़ता है। काफिर तो जो छोड़ता है ना, वो तो आपको पता ही है कि वो उसके ऊपर ईमान नहीं लेकर आता, लेकिन मुसलमान ईमान ला के भी छोड़ता है। वो कैसे? मसलन कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी, उस पर अमल नहीं करना, इसके अहकाम को, मसाइल को समझने की कोशिश ही नहीं करनी, सीखना ही नहीं है, इसमें है क्या? सुनी अनसुनी कर देनी, या तो अमल नहीं करना, या उसकी तालीम नहीं हासिल करनी, या इसको इसकी तिलावत नहीं करनी। ये सारे छोड़ने के डिफरेंट लेवल्स हैं ना। जिसने इससे कुफर किया, देखिए उसका तो आपने अंजाम पढ़ ही लिया कि आसमानों के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते, जमीन पे पटख दिया जाएगा, उसको आग का लिबास पहना जाएगा, आग का बिस्तर होगा, फरिश्ते उसको गुर्ज मारेंगे लोहे के, उस पे जहरीले सांप मुसल्लत होंगे। तो ये कब्रों से अपनी उठाए जाएंगे तो सर के बल चलने की सजा होगी इनकी, तो उनके लिए तो हमेशा हमेशा की जहन्नुम है जिसने कुरान को नहीं माना। ये तो बदतरीन सजा है ना, ये तो पहले दर्जे का छोड़ना है कि ईमान नहीं लेकर आए। अब ये जो ईमान लाने के बाद इसको छोड़ते हैं, यानी उसकी तलावत नहीं करते या उस पर अमल नहीं करते, या फिर इसको अमल की किताब ही नहीं समझते, नहीं जी इस पे नहीं अमल हो सकता, अब इतने हम मॉडर्न जमाने में, अब इसके ऊपर अमल नहीं, आज आज की जिंदगी में नहीं हो सकता, या इसे गाइडेंस ही नहीं लेते, या अपने मसाइल का हल इसमें समझते ही नहीं है कि इस दूसरों से तो जाके मसलों के हल चाहते हैं, इससे नहीं चाहते, इसको फुरकान नहीं बनाते कि ये हमें फर्क बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, नहीं कभी समझने का। बाज लोग तो माशाल्लाह ऐसे वो होते हैं कि वो कहते हैं समझने की जरूरत क्या, हम घर में ही पढ़ लेते हैं, हमने घर में कई दफा पढ़ा हुआ, तो बाकी चीजों को तो नहीं आप कहते कि घर में ही हम ऐसे ही खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं किताबें पढ़ पढ़ के, खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं किताबें पढ़ पढ़ के, उसके लिए तो आप किसी उस्ताद की मदद देते हैं, कुरान पढ़ने के लिए ऐसे क्यों कहते हैं कि नहीं हमें किसी से नहीं पढ़ने की जरूरत। अब नर्सरी से लेके आप कॉलेज तक खुद ही पढ़ लेते ना, बाज तो देखते ही कह देते हैं कि हमने तो पहले ही 2-3 दफा घर में खत्म किया हुआ, ताकि दूसरा कह ना दे कहीं कि आ जाओ सीख लो। ये भी है इसको छोड़ने में कि इसकी आयात से अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करना, ये भी कुरान को छोड़ना है, जो इसने कहा है करने को उसको करना नहीं, जिससे रुकने को कहा है उससे रुकना नहीं, ये भी इसको छोड़ना है। फिर ये भी छोड़ना है कि दूसरी किताबों को इस पे तरजीह देना, दूसरे उलूम को इस पे तरजीह देना, कि आप प्रेफर तो करते हैं, आप देखें एक तरफ कुरान है, आप कुरान को छोड़ के सारी दुनिया के उलूम तो हासिल कर रही हैं, 16 ईयर्स आप पढ़ती रही हैं, 20 ईयर्स आप पढ़ती रही हैं, पढ़ पढ़ के भी आप जॉब कर रही हैं, साथ भी फिर कुछ ना कुछ इम्तिहान देते रहते हैं, लेकिन कुरान की जब बारी आती है तो उसको कभी नहीं इतनी अहमियत दी कि कभी इसको भी खोल कर देखा जाए, कभी इसको भी सीखा जाए, इसको भी समझा जाए, ये क्या कहता है हमें। और बास तो ऐसे हैं जिनके पास कुरान आया, उन्होंने चख के देखा और फिर दूर कर दिया और कहा ये हमारे काम का नहीं है, नहीं भाई नहीं, ये नहीं आ सकता हमारी जिंदगियों में। कितना अफसोस है ना ऐसे लोगों के लिए, मुझे अफसोस इस बात पे है कि इतनी जिंदगी तो उन्होंने बेकार गंवाई दी, आधी पता नहीं रह गई है या फिर इससे भी कम रह गई है, तो अभी भी कहते हैं कि नहीं ये अभी भी नहीं हमने सीखना, हमने बस सूरह नूर पढ़ी थी वो बड़ी मुश्किल है, इसलिए लिहाजा हम अब कुरान ही नहीं सीख रहे। शाबाश फिर, तो ये देखो फिर कि वो उस दिन खड़े होके खुद गवाही देंगे कि अल्लाह इन्होंने छोड़ दिया था, इस बात का क्या जवाब देंगे फिर आप, क्या कहेंगे इस बात का जवाब, कि और कामों में तो लगे रहे, उस और कामों में तो बड़ी एफिशिएंट थी, घर की डेकोरेशन में और कुकिंग में, और वो जो मर्जी रेसिपी से पूछ लें, हार सिंगार जो पूछ लो, कौन सा मेकअप कहाँ से मिलता है और कपड़े कहाँ से, कौन सा आजकल लेटेस्ट फैशन चल रहा है, सब पता है, किसी चीज को नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ा तो कुरान को छोड़ा, और कामों में पड़े रहे जो फजूल काम थे, मैं तो उनको फजूल कह रही हूं लेकिन हो सकता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मगर जाहिर है कुरान के मुकाबले में तो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं ना। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ये तो वो है जिसके मिलने पे तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ, क्योंकि ये हर उस चीज से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं, ये तो हर उस चीज से बेहतर है, तुमने इसको क्या समझा हुआ, ये तुम्हारा मोहताज है कि तुम इसको पढ़ो सीखो, तुम इसके मोहताज हो कि इसके जरिए अपनी जिंदगियों को हैवानी जिंदगी से लेकर से बदल के उठा के और इंसान बनो, ये तुम्हें इंसान बनाता है, ये तो वो है, और तुम इससे छुटकारा ले रहे हो। अब ये डिफरेंट डिफरेंट छोड़ने के दर्जे हैं ना, कुछ हैं तो जो पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ नाजरा पढ़ लेते हैं, सीख ही नहीं रहे, कुछ हैं जो सीख रहे हैं तो फिर आगे अमल नहीं कर रहे, कुछ हैं जो अमल करते हैं लेकिन फिर आगे उसको उसके अंदर और गौर व फिक्र नहीं करते, या अपने मसाइल का हल उसके अंदर से नहीं ढूंढते। आप देखें छोड़ने के डिफरेंट दर्जे हो सकते हैं, जिनमें से मैंने आपको ये बातें बताई, जो जितना ज्यादा छोड़ेगा उतनी बड़ी उसके लिए सजा है।
जिसने जितना काम, अब एक बंदा कहता है मैंने पढ़ना ही नहीं, सीखना ही नहीं, सीखूंगी तो अमल करना पड़ेगा, तो उसने तो दो दर्जे का छोड़ दिया ना, उसको दो चीजें छोड़ दी, ना सीखा ना अमल किया। जिसने सीखा है लेकिन अमल नहीं कर रहा, चलो उसने सीख तो लिया ना, किसी की ना किसी दिन अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे, कुछ ना कुछ हद तक तो इंसान अमल करने की कोशिश करेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो उसके दिल में खौफे खुदा पैदा होगा ही ना, अमल करने की पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जो सीख ही नहीं रहे इस वजह से कि अमल करना पड़े, तो सोचें कितनी हद तक उन्होंने कुरान को छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो इसको काबिल अमल किताब नहीं समझते क्या? या तो कह दो ना कि ये अमल के काबिल ही नहीं है, छोड़ो इसको, इसको ये हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, साफ ये कह दो, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और हमें एक दफ़ा पढ़ा था, हमें नहीं लगता कि ये कोई हमारी कोई अमल की किताब है, कोई प्रैक्टिकल बुक नहीं है। तो फिर सोच लें कि फिर क्या हाल होगा उनका, दुनिया की ज़िंदगी में इसकी सज़ा भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। आखिरत में तो जो मैंने आपको बताया दुनिया की ज़िंदगी में क्या सज़ा है, कि ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह ताहा में कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा उसके लिए तकलीफ दे ज़िंदगी होगी, माईशतन दन का उसके लिए तकलीफ दे ज़िंदगी होगी। वो तकलीफ दे ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं है कि जॉब चली जाएगी, जॉब नहीं होगी। आप कहेंगे फलां तो बड़ा अमीर है और उन्होंने तो छोड़ा हुआ, उनको तो नहीं कुछ हुआ, हो सकता है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, हो सकता है ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म हो जाए, नाफरमान औलाद निकल जाए, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होने लगे हैं, या जायदादों के झगड़े कई होते हैं, कई औलाद वालदैन के दरमियान इतनी लड़ाई झगड़े और बेसकूनियाँ, या बहन भाइयों के दरमियान ऐसी बातें होती हैं, कई मुकदमात में फंस जाते हैं, रात का चैन और दिन का सुकून ख़त्म हो जाता है। तो कुछ किसी तरह से भी, लेकिन अल्लाह ताला उनको परेशानियों में मुबतला करता है। अब किस तरह से किसकी है, किसके ऊपर किस तरह की सजा आती है, यह हम उसकी बजाहिर देख के नहीं जानते। और इसी तरह बदअमनी और जरायम और जो आफात इस तरह की, कहत साली की या तबाहियां या जलजले या ये भी चीजें हैं, ये भी एक सजा है जो कौमों के ऊपर आती है, जो कौमें छोड़ देती हैं, और हमने तो बहैसियत कौम ही छोड़ दिया हुआ है ना। आज देखें एक बच्चा नर्सरी से लेके और पढ़ना शुरू करता है, 16-17 साल वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता रहता है, जब वो निकलता है वहाँ से तो उसके पास बड़ी से बड़ी डिग्री होती है, लेकिन कुरान पाक उसको पढ़ना भी नहीं सही आता। क्या हम ये नहीं कर सकते कि इन 15-16 सालों में एक बच्चे को एक किताब, जहाँ पे वो इतनी मोटी किताबें पढ़ता है, एक किताब ये कुरान सही पढ़ना समझना, उसकी तफसीर वगैरह हम उसको पढ़ा दें, कि 16 साल में क्या एक किताब भी नहीं पढ़ सकता? ये तो एक है, वो तो ढेरों किताबें पढ़ता है, लेकिन हमारा ये एजेंडा है ही नहीं ना, ये तो पढ़ाना ही नहीं है हमने, सिखाना ही नहीं, बस इसको तो निकाल ही दिया हुआ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। बाकी चीज़ें आपको एक हुनरमंद इंसान तो बना देंगी, बाकी उलूम, लेकिन आपके जन्नत की तैयारी नहीं करा सकते, रब को राज़ी करने का तरीका नहीं बता सकते, जितने मर्जी आप उलूम देख लें। फिर दूसरी इसकी दुनिया में सज़ा क्या होती है कि शैतान मुसल्लत हो जाता है, वे फिर मरते दम तक उसको ना उल्टे रास्ते पर चलाए रखता है। अब मैंने आपको बताया ना शैतान कैसे करता है, वो बुराइयों को भलाइयां करके दिखाने लगता है। अब देखें इसके भी दलील है कुरान में, सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, यानी इस कुरान से गाफिल हो जाता है ना, हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो उसका साथी बन जाता है। फिर वो शैतान ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोके रखता है, लोग अपनी जगह समझते हैं कि वो राह रास्त पर है, यानी वो सारे अल्लाह की नाफरमानी के काम करते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम तो ठीक है, हमने क्या गलत किया। अरे इतना शैतान उनको बुराई को खुशनुमा बना देता है, उनको बुराई लगती है कि ये तो अच्छाई है, उनको बातिल लगता है ये हक है, उनको झूठ लगता है कि यही तो सही रास्ता है, इसके बगैर कहाँ जिंदगी गुजर सकती है, इतना शैतान उनको बहका देता है। ये शैतान ही तो था ना कि फिरौन अपने आप को पता है हिदायत याफ्ता समझता था, और मूसा अलैहिस्सलाम को कहता था ये गुमराह है, फिरौन कहता था मेरा तो ख्याल है तुम पे जादू किया गया, सूरह बनी इसराइल में है ये, और अपने बारे में क्या कहता था सूरह मोमिन में, कि मैं तुम्हें अपनी कौम को कहता था मेरी कौम मैं तुम्हें वही बात समझाता हूँ जो मुझे सही लगती है, और मैं तो तुम्हें सिर्फ नेकी की बात बताता हूँ। देखो शैतान ने उसको क्या कर दिया था, नेकी उसको भलाई लगती थी। आज देखें जिसको आप तरक्की कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये रोशन ख्याली है, वो क्या है, वो उसको इस्लाम ने पसंद नहीं किया, उसको इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। जिसको आप कहते हैं कि ये रक्स और मौसीकी और ये तो रूह की गिजाएं हैं, उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए शैतान हर बुराई को कैसे खूबसूरत बना के दिखा रहा है, हर हराम को कैसे हलाल बना के दिखा रहा है। फिर इसकी तीसरी सजा दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है। आज देखने कैसी जिल्लत और रुसवाई, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बल्कि एज उम्मा हमारी जिल्लत और रुसवाई का हाल देखें दुनिया में क्या हो रहा है। इस किताब के जरिए, मुस्लिम की हदीस है कि इस किताब के जरिए अल्लाह ताला बाज लोगों को उरूज अता फरमाता है और बाज लोगों को जलील कर देता है। इसी से जरिए एक शायर ने कहा था ना, उसकी नसर मैं आपको बताती हूँ, मुझे तो शेर नहीं याद है, कि तू फलां फलां की शिकायत करता फिरता है कि उसकी गर्दिश ने मुझे ख्वार कर दिया है, तो ये गलत है, तू सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से ख्वार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया जिस शख्स ने कुरान पढ़ा मगर फिर इसे बंद करके घर में मुअल्लक कर दिया, यानी घर में लटका दिया, बस एक तरफ रख दिया, ना इसकी तिलावत की पाबंदी की ना इसके अहकामात पर गौर किया, तो कयामत के दिन वो इसके गले में पड़ा हुआ आएगा और अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि आपके इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था, अब आप मेरे और इसके दरमियान फैसला करें। ये तो आखरत में होगा ना, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का बायस बनेगा इसका छोड़ना। अब मुसलमानों ने जब उरूज हासिल किया था ना, वो कुरान के ऊपर अमल करने की वजह से किया था, और आज जो जवाल है उसकी वजह भी यही है कि कुरान को छोड़ दिया। हजरत उमर की तो हुकूमत के अंदर ऐसे लोग होते थे जो हाफिज़े कुरान थे या आलिम कुरान होते थे, और वो सारी ममलिकतों को फिर कुरान के मुताबिक चलाने वाले थे, और आज आपके वजीर हैं और उनको सूरह इखलास भी पढ़नी नहीं आती। स्कूलों कॉलेजों में हर तरह की पढ़ाई कराई जा रही है, सोशल वर्क से लेके मैथ से लेके इंग्लिश, यानी दुनिया जहान के आप देखें स्कूलों में बच्चों को कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे इस्लामी मुमलिकत में ही देख लें कि कुरान की तालीम नहीं है, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर आप इसकी दुनिया में तो ये मैंने आपको सजाएं बताई ना, बरजखी जिंदगी में भी इसकी सजा है, उसका मैंने आपको जिक्र किया था कि जब वो उसे कब्र के अंदर पूछा जाएगा भाई तुम्हें सवालात के जवाब क्यों नहीं आए, जो मुनकर नकीर पूछेंगे, तो वो कहा कि मुझे नहीं आते ये सवालों के जवाब, तो वो फरिश्ता उसको डांट के पूछेगा ला तरीता वला तलईता, तूने ना जानने की कोशिश की ना ही तूने तिलावत की, यानी कुरान को तूने पढ़ा ही नहीं, तूने तिलावत नहीं की। उसके बाद फरिश्ते मैयत को लोहे के गुर्जों से मारना शुरू करेंगे और कयामत तक वो ये सजा भुगतता रहेगा। फिर आखरत में जो सजा है वो तो मैंने आपको ये बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका आगे खड़े होके ये शिकायत करेंगे। अब मुझे बताएं वो लोग जो कहते हैं हमारी सिफारिश करेंगे, मुसलमानों में से ही है ना, लोग कहते हैं हमारी सिफारिश करेंगे, तो आज आपने तो उनके लाए हुए उनकी जो जुबान से निकला हुआ कलाम है उसको ही छोड़ दिया हुआ है, तो यहां तो कुरान कह रहा है कि वो आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो तो शिकायत करेंगे। और फिर मैंने जैसे आपको अभी ये हदीस बताई है कि कुरान खुद भी ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही देगा, और ये भी मुस्लिम की भी एक और हदीस में आता है कि कयामत के दिन कुरान तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। तो खुद सोचें जिसके खिलाफ रसूल भी गवाही दे रहा है और कुरान भी गवाही दे रहा है कि अल्लाह इसने मुझे छोड़ा हुआ था, अल्लाह आज तू मेरे और इसके दरमियान फैसला कर, तो मुझे बताएं कि उस बंदे का हाल क्या होगा, कौन सी जमीन उसको पनाह देगी, कौन सा आसमान उसकी मदद करेगा, कौन उसके लिए खड़ा होएगा और कहेगा कि मैं जी इसकी सिफारिश करता हूँ। और फिर ये तो गवाहियां हैं, जब वो कब्र से उठेगा ना तो पता है किस हालत में उठेगा। सूरह तहा में आयत नंबर 124 में है कि जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तकलीफ दे जिंदगी होगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे, और ये हम पढ़ चुके हैं कि अंधा करके वो उठाया जाएगा वहां पे और कहेगा अल्लाह ताला मैं अंधा करके क्यों उठाया गया, मेरे पास तो आंखें थी दुनिया में, मैं दुनिया में तो ब्लाइंड नहीं था, तो उसको कहा जाएगा इसलिए कि तूने मेरे जिक्र से अंधा रहा ना दुनिया में, तो आज तू अंधा ही फिर यहाँ पे, हम अंधे नहीं बने हुए अल्लाह के जिक्र से, हमारे घरों में कुरान पढ़े हुए आज तक हमें तौफीक नहीं हुई, इसीलिए हम बूढ़े भी हो जाते हैं हमें नहीं पता कि कुरान क्या है, उस वक्त भी बुलाते हैं ना तो उस वक्त भी मसरूफियात है, उस वक्त भी कहते हैं कि बुढ़ापे में भी आके हमारे पास टाइम नहीं अल्लाह की किताब के लिए, तब भी उसको छोड़ा हुआ है, तब भी उसको बस थोड़ा बहुत कुछ देर दे दी और वो भी बहुत एहसान कर दिया कि देखो हम इतनी मसरूफियात के बावजूद देखो हम पढ़ रहे हैं हम सीख रहे हैं इसको, अव्वल तो ऑलरेडी टू लेट हो गया, फिर भी टू लेट हो के भी आप उसके लिए नहीं वक्त निकाल रहे तो कब निकालेंगे फिर? कब्र में पढ़ने की किताब है ये, मुर्दों की किताब नहीं, ये जिंदों की किताब है। ये मुर्दों के लिए नहीं उतरा कलाम कि हम उनको पढ़ पढ़ के सुनाएं। मैयत सामने पढ़ी हो, ज्यादातर तो यही होता है ना, कोई मर जाए तो हम मर मर के खोलते हैं कि हाय अब कुरान पढ़ना पड़ गया, और फिर उनको सुनाने बैठ जाते हैं। उनकी हिदायत के लिए नहीं है, हमारी हिदायत के लिए। क्या इतनी सजाएं काफी नहीं है? और क्या फिर भी कोई सवाल पूछ सकता है कि कुरान को पढ़ना जरूरी है, इसको सीखना जरूरी है? क्या जरूरी है कि हम ये इतनी जो मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्या फिर भी मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपको क्यों कुरान को सीखना चाहिए? क्या इन सारी सजाओं के लिए हम तैयार हैं, दुनिया की भी, बरजख की भी और आखरत की भी? और फिर भी हम ना खुद को, ना अपने घर वालों को, ना अपने रिश्तेदारों तक ये पैगाम नहीं पहुंचाते कि ये इस किताब की तरफ आना कितना जरूरी है। फिर भी हम ये सवाल पूछते हैं, अच्छा जरूरी है क्या, फर्ज है? तो ये आपको बताया जाए कि क्या फर्ज है, आप जिंदगी गुजारोगे कैसे? फर्ज और उसको तो छोड़ो, आप कभी पूछते हैं किसी से खाना खाना फर्ज है? क्योंकि आपको पता है सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कोई बहुत ही अहमक होगा जो ये पूछेगा खाना खाना फर्ज है, तो ना खाओ, क्या होगा, मर जाओगे फिर। तो ये कुरान भी ना सीखा, ना समझा, ना इसको अपनी जिंदगी में लाए तो रूह मर जाएगी, आपकी ईमानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईमान आहिस्ता आहिस्ता घटता रहता है, घटता रहता है, ईमान रहता ही नहीं, इंसान को पता ही नहीं चलता जब वो कुरान से दूर हो जाता है। तो उसको बताने वाला ही कोई नहीं ना, उसको पता ही नहीं है कि हलाल हराम क्या है, सीधा रास्ता क्या है, अच्छाई बुराई क्या है। जो जिसने बता दिया, जो जैसा कोई चल रहा है, जो बचपन से कुछ सुन लिया था, कुछ जान लिया था, बस उसी पे चलते चले जा रहे हैं। और छोड़ने में ये भी आ जाता है कि देखें आपने यहाँ पे कमिट किया हुआ कि आप क्लास में बैठेंगे, लेकिन आपने उन 3 घंटों के अंदर कुरान तो वहां पे खुला पड़ा है, आपने कहा चलो मैं साथ सफाई भी कर लेती हूँ, साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। कमिट आपने किया था कि मैं ये क्लास लूंगी, आपने कुरान को छोड़ दिया, और आप उससे ज्यादा बेकार एक जो फजूलियात चीजें हैं, जिनको आप जरूरियात कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उनमें पड़ गए। तो क्या वो कुरान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कुरान को छोड़ के क्या आप ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में चले गए, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था? तो जब ऐसा आप पढ़ेंगे कि आधा क्लास ली आधा नहीं ली, जब ये क्वालिटी ऑफ वर्क आपका होगा तो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही होगा ना। तो ये थे अंजाम इस कुरान को छोड़ने के। आप बताएं कि हम इस कुरान को छोड़ने वाले बनना चाहते हैं या इसको अपनी जिंदगी में शामिल करने वाले? हमारी तो ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारी जिंदगी में आखिर दम तक, हमारी आखिरी सांस तक इसको हमारी जिंदगी में शामिल रखना। क्योंकि ये किताब इंसान को उसकी ये जिंदगी भी बताती है और उसका अंजाम भी बताती है। कोई और दुनिया का इल्म ऐसा नहीं है जो आपको मरने के बाद की जिंदगी का हाल बता सके। कुरान फ्यूचर ओरिएंटेड है, बाकी सारे उलूम क्या है, पास्ट ओरिएंटेड। वो लोग तो आज क्या करते, वो उस जमाने में क्या करते थे कि इस कुरान से लोगों को हटाने के लिए वो राग रागनियां और इस तरह किस्से कहानियां लेके बैठ जाते थे, ताकि शेर व शायरी और गजलियात और ये वो चीज़ें, ताकि लोग कुरान की तरफ जाएं ही नहीं। आज हमारे पास और बहुत से मशगले हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शंस हैं जो हमें खींचती हैं। वो तो कहते थे इस कुरान को ना सुनो, इसके पढ़े जाने के वक्त शोर गुल करो ताकि कोई सुने ही ना। तो असल सच्चाई तो इस किताब में है। जब तक इसका इल्म नहीं होगा, आपको नहीं तमीज आएगी खैर और शर में। ये फुरकान है, आपको अपनी फलाह और भलाई का और शर के बारे में तमीज इनके दरमियान नहीं हो सकती इस फुरकान को जाने बगैर। वकाजा अली का जाल ना ली कुल्ली नबी अदू मिन अल मुजरिमीन, और हर नबी के लिए हमने मुजरिमों में से दुश्मन पैदा किए, दुश्मन बनाए। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया, ए नबी आपके लिए अगर आपकी कौम ने अगर छोड़ा हुआ ना इसको कुरान को, तो आपसे पहले भी जितने नबी आए उनके दुश्मन थे, मुजरिमों में से थे जो ये काम करने वाले थे, जो कि उनको पर ईमान नहीं लाते थे। हाँ, ये हर दीन के काम करने वाले के लिए बड़ी अहम बात है कि हर पैगंबर को सताने वाले लोग हर दौर में रहे हैं। लेकिन फिर लोग सवाल करते हैं, अच्छा फिर अल्लाह ताला ने उनका क्यों नहीं कुछ किया? और वो लोग भी कहते थे कि अगर हम इतने ही अल्लाह के पैगंबर हैं, हम इनको इतना सताते हैं, तो हमारे पर कोई आफत क्यों नहीं आती? तो असल बात यह कि अगर अल्लाह ताला फौरन पकड़ लेता तो फिर इनका इम्तिहान ही क्या रह जाता। देखिए, आप जब आपको इम्तिहान का पर्चा दिया जाता है तो क्या होता है, आपको पूरी आज़ादी होती है कि इसमें जो चाहें लिखें। तो इनको अपनी मनमानियां करने की अल्लाह ने आज़ादी दे दी थी। अब इन्होंने मुखालफतें की रसूल की, अल्लाह ने मोहलत दी और बहुत मोहलत दे के उसके बाद फिर पकड़ की थी। तो अगर फौरन अल्लाह पकड़ कर ले तो फिर तो हर कोई कहेगा हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया। हर नबी के दुश्मन आए, लेकिन अल्लाह ने उसके ज़रिए भी अंबिया के दर्जात को बुलंद फरमाया, क्योंकि जब इम्तिहान में पड़े और उन्होंने सब्र किया, उससे भी उनके दर्जे बुलंद हुए। तो कोई भी क्वेश्चन करे, ये बात कहे कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता, फिर अल्लाह क्यों नहीं उनको पकड़ लेता था, फिर क्यों नहीं अल्लाह ताला उनको सज़ा देता था, और अल्लाह ने खुद उनको ढील दी हुई थी, मनमानी करने का मौका दिया हुआ था। तो हर दौर में मुजरिम किस्म के लोग आए हैं, लेकिन क्या होता है, वकफा भी रब्बी का हादियम व नसीरा, लेकिन अल्लाह काफ़ी है, तेरा रब काफ़ी है हिदायत देने वाला और मददगार। अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ में रखी है। इनकी कोशिशें करने से ये किसी को हिदायत से नहीं रोक सकते, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। वो उसने फिर भी अपने पैगंबरों के काम में उनको मदद दी और लोगों को हिदायत नसीब हुई। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी गई कि आप लोगों की मुखालफत को दिल पे ना लें, इनकी ना परवाह करें, अल्लाह ने इनके हाथ में थोड़ी दिया है लोगों को हिदायत देना, वो अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह मददगार हो जाता है उसका जो हिदायत की तरफ आता है। फिर उसके बाद काफरों का एक एतराज़ ये भी था कि ये कुरान एक दफ़ा ही क्यों नहीं उतर गया, जैसे तौरात इंजील वगैरह एक दफ़ा उतरी, जबूर एक दफ़ा उतरी। आपको पता है ना कि मूसा अलैहि सलाम को जो तख्तियाँ थी वो अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा दे दी थी और वो उनको लेकर आ गए थे। तो उन्होंने ये एतराज़ किया था, और इसी तरह ईसा अलैहि सलाम पे भी एक ही दफ़ा में इंजील उतर गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक दफ़ा में क्यों नहीं कुरान उतरा, क्यों 23 ईयर्स तक थोड़ा थोड़ा करके क्यों उतरता रहा? तो अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर आपके साथ वो मामला क्यों नहीं हुआ जो पहले पैगंबरों के साथ हुआ? तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया, वक़ाल लज़ीना कफरू लौला नुज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा, क्यों नहीं ऐसे उतरा? इसका जवाब क्या है, कज़ालिक, इसी तरह, अल्लाह ने इसी तरह चाहा, ताकि लिनुसब्बिता बिही फुआदका, ताकि मजबूत कर दे इसके साथ तेरे दिल को। वजह क्या थी थोड़ा थोड़ा नाजिल करने की, कि आपके दिल इसके साथ मजबूत कर दे। एक ही दफा नाजिल कर देते तो दिल ऐसे ना जमते, तो ताकि मोमिनों का दिल जमाए रखे अल्लाह ताला, ठहर ठहर के अहकाम दिए, एकदम अमल करना मुश्किल हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता करके देने से पहले उनको प्रॉपरली, उनके दिल को तैयार किया गया, उनके दिल को जमाया गया, और फिर थोड़े थोड़े करके अहकाम दिए गए। अब मसलन मिसाल के तौर पे बारिश एक ही दिन सारी पड़ जाए तो उतना फ़ायदा नहीं होता, जितना थोड़ी थोड़ी करके एक दिन बारिश हो, फिर कुछ दिन बाद फिर बारिश हो, फिर बारिश हो, तो वो फ़ायदा देती है। वरत्तल ना हो तरतीला, और अल्लाह ताला ने ठहर ठहर के पढ़ सुनाया, हमने इसको ठहर ठहर के पढ़ सुनाना कि उम्दा तरीके से पढ़ा, और ऐसे अल्लाह ताला ने ठहर ठहर के नाजिल किया। वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक, और नहीं वो लाते आपके पास कोई एतराज़ मगर हम ले आते हैं आपके पास हक को। जब भी वो कोई एतराज़ लेकर आते हैं, एक तीसरी वजह इसकी ये है, इसको ठहर ठहर के नाजिल करने की, कि जब वो कोई एतराज़ लेकर आते थे, कोई बात लेकर आते थे, तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे देते थे हक के साथ। वह आसाना तफसीरा, और दूसरी दफ़ा फिर जब नाजिल होती थी कोई वही, तो और ज़्यादा उसकी डिटेल पता चल जाती थी, उस हुक्म की और वजाहत हो जाती थी। ये वजूहात हैं कि इससे आपका दिल भी जमा रहे, आहिस्ता आहिस्ता उतारने से, एक ही दफ़ा हाथ में एक कलाम पूरा दे दिया जाता उस तरह दिल ना जमता, ठहर ठहर के पढ़ा, ठहर ठहर के सुनाने में भी हिकमत है, ताकि उससे। लेकिन जब कोई हुक्म एक ही दफ़ा, मिसाल के तौर पे थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको कही जाए करने के लिए ना, तो आपके लिए आसान होती है। एक दफ़ा आपको 100 अहकाम दे दिए जाए, ये सारे आपने करने हैं, तो क्या होगा, मुश्किल होगी ना आपकी। देखें फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास है, आपकी क्लास रोज़ नहीं होती, हफ्ते में एक दफ़ा होती है ना, इसका भी बहुत फ़ायदा है। वो कैसे? कि जो एक दिन में सीखा होता है वो पूरे हफ्ते आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकते हैं, उसको और समझ सकते हैं, उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अमल की बातें सोच सकते हैं। अगर आपकी एवरीडे क्लास होती, आज का जो होता वो कल भूल भी जाता, दूसरा नई चीज़ आ जाती, फिर परसों तीसरी चीज़ आ जाती, फिर उससे अगले दिन चौथी चीज़ आ जाती, आपको पहले दिन का वैसे ही भूल चुका होता, तो वो जज़्ब करना आसान हो जाता है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप जब ठहर ठहर के चीज़ आती है तो। ठीक है, फिर देखिए ना, इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें थी। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे तो नहीं दिया गया, आप तो उम्मी थे, आपको लिखना पढ़ना तो नहीं आपको सिखाया गया था, सीखा हुआ था आपने, तो जब ठहर ठहर के नाजिल हुआ तो आपको जुबानी याद करना आसान हो गया, ताकि याद करना आसान हो जाए। फिर जो कुरान में कई कुछ कैंसल हो गई, कुछ आयतें बाद में उनके लिए और अहकाम आ गए, तो वो भी फिर एक ही दफा दे दिया जाता तो फिर वो कैंसलेशन ना होती। पहले काम पहले तो कुछ मुश्किल थे, फिर आसान कर दिए गए, फिर बाज अहकाम ऐसे थे पहले आसान थे, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जरा सख्त किया गया। मिसाल के तौर पे आपके सामने मिसाल है शराब की, शराब को आहिस्ता 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 करके फिर हराम किया गया ना, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह बाज दफा वो कुछ सवालात लेकर आते थे, बाज दफा कुछ इतराजात लेकर आते थे, तो उसका उसी वक्त जब जवाब दिया जाए तो ही इफेक्टिव है ना, पहले से तो नहीं दे दिया जाए। तो मिसाल के मसलन उन्होंने पूछा चांद के घटने बढ़ने के बारे में, तो उसके बारे में जवाब फिर बाद में आया। उन्होंने पूछा कि औरत हैज के अयाम में हो, तो उससे जमा करने के बारे में, इंटरकोर्स करने के बारे में सवाल किया, तो वो उस वक्त का था। फिर इसी तरह आप ये देखें हजरत आयशा के साथ ये जो वाकया हुआ, तो उसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने फिर अहकाम दिए, जब वो वाकया हुआ तो उसके बाद जो अहकाम दिए वो ज्यादा इफेक्टिव थे बजाय इसके कि वैसे ही हुक्म दे दिया जाता। इसी तरह बाज दफा यहूदियों ने सवालात किए तो उनके ऊपर जवाबात नाजिल हुए, जैसे मसलन असहाबे कहफ की बातें, रूह के बारे में, जुलकरनैन के बारे में आप पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई दफा ये लोग, मतलब आप इस चीजों को पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई दफा ये इतनी बुरी बुरी बातें करते थे, इतनी दिल दुखान देने वाली बातें कहते थे, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला यानी तसल्ली की आयात नाजिल करते हैं। कभी उन्होंने शायर कह दिया, कभी उन्होंने जादूगर कह दिया, कभी उन्होंने कोई मजनून कह देते थे, तो उस वक्त जब अल्लाह ताला तसल्ली देते थे तो वो आयतें उस वक्त मोर इफेक्टिव होती थी, कि उस फौरन अल्लाह की तरफ से तसल्ली आ गई। फिर किसी ने आपसे किस्सा यूसुफ के बारे में पूछा था, तो अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाजिल की थी। इसी तरह सहाबा किराम को कोई मसला नहीं समझ आता था, तो उस वक्त जब उसकी उसको क्लियर करने के लिए जब आयात नाजिल होती थी तो वो ज्यादा वाजे हो जाता था। मसलन आपने सूरह नूर में ही पढ़ा ना, वो एक सहाबी थे तो उन्होंने पूछा कि अगर मियाँ बीवी के शौहर अपनी बीवी को इस तरह की हालत में देख ले तो फिर वो क्या करे, तो उसके ऊपर आयात नाजिल हुई। फिर बाज इंडिविजुअल मामलात में भी आयात नाजिल हुई, तो यानी इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। तो लेकिन फिर भी जो लोग इस पर एतराजात करने वाले हैं, फिर भी जो लोग इसको नहीं मानते, तो उनका क्या हशर होगा? अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम, ऐसे भी लोग हैं जो फिर भी इसके ऊपर एतराज़ करने से बाज नहीं आते, तो अल्लाह ताला उनको उनका हशर करेगा, उनको इकट्ठे करेगा उनके चेहरों के बल तरफ जहन्नुम के, उलाए का शर मकान वादलु सबीला, तो बहुत बदतरीन मकाम के एतबार से भी और बहुत ज़्यादा भटके हुए रास्ते के एतबार से भी। यानी ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फिर भी इन चीज़ों से बाज नहीं आते, उनका बहुत ही बुरा ठिकाना है, जहन्नुम की तरफ ये ऊंधे मूंद चलाए जाएंगे। तो एक शख्स ने पूछा था, तिर्मिज़ी की रवायत है ना, क़यामत के दिन तीन किस्म के लोग इकट्ठे किए जाएंगे, कुछ पैदल होंगे, कुछ सवार होंगे, कुछ मुंह के बल चलाए जाएंगे। तो किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुंह की तरफ मुंह के बल किस तरह चलेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो रब पैरों पर चला सकता है तो वो मुंह के बल भी चला सकता। तो फिर एक और रिवायत में आता है कि फिर ये लोग जो होंगे ना अपने मुंह ही से हर बुलंदी और कांटे से बचते हुए चलेंगे, जैसे इंसान पैर बचा बचा के चलता है ना, अस्तग़फिरुल्लाह कि कोई कांटा ना लग जाए या किसी चीज़ से ना टकरा जाऊं, तो ये अपने मुंह को इस तरह बचा बचा के चलेंगे, मैंने अपसाइड डाउन कैसे चल रहे होंगे या मुंह के बल किस तरह से चलेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से महफूज रखे हम सबको। सुबहानक अल्लाहुम्मा वा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह हम इन आयात की तिलावत सुनेंगे।
فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا